परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जिसे उसने हम सबको दिया है ताकि हम फिर से उसके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। पिछले अध्ययन में हमने इसी अध्याय के 13 पद तक हमने वचन देखे और आज हम उससे आगे अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और लुका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर न केवल उड़ाव पुत्र बुरी आर्थिक स्थिति में है बल्कि वह देश भी एक बुरी स्थिति में है। आप देखिए कि उस देश में जहाँ वह सोचता था कि हरियाली है, अब वह सूख चुका है और उस देश में बड़ा अकाल पड़ा है। वह नहीं जानता है कि वह क्या करना है। यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो वह अपने घर जाने से डरता है। उसको नहीं डरना चाहिए था मगर वह घर जाने से डरता है। अब वह बहुत मुश्किल में है। वह इतना आर्थिक तंगी में था कि अब वह ऐसे काम करने जा रहा था जो कोई भी यहूदी कभी नहीं करता जब तक कि वह घोर तंगी में ना पहुंच जाए। उड़ाव पुत्र घोर तंगी में था, उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। वह अपने उन मित्रों के पास जाता है जो उसे अच्छे समय में उसके साथ थे और वह कहता है, विजय, क्या तुम याद करते हो कि तुम मेरे पार्टी में आया करते थे और मैं पैसा निकालकर तुम्हें शराब दिया करता था, लड़कियों के लिए पैसा उड़ाया करता था, अब मुझे पैसा चुका दो। याद करते हो ना, अब मैं बुरी स्थिति में हूं, क्या तुम मुझे अपने यहां ठहरा सकते हो या मुझे कोई काम दे सकते हो। और उसके अच्छे समय का मित्र कहता है, माफ करो मेरे दोस्त, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, तुम्हारा सब पैसा अब खत्म हो गया है, अब मेरी तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं है, मेरा सचिव तुमको बाहर का रास्ता दिखाएगा। मेरे मित्र, एक जगह से दूसरे जगह जाते जाते उसने पाया कि उस देश में उसका कोई भी दोस्त नहीं है। अंत में वह शहर के बाहर एक व्यक्ति के पास गया जो सूअरों को पालता था। मीलों दूर उस व्यक्ति के पास जाकर कहा, मुझे एक काम चाहिए। वह व्यक्ति कहता है, तुम जानते हो कि हमारा देश कठिनाई से गुजर रहा है, मेरे पास सूअरों को चराने का काम है मगर मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा और तुम्हें उन फलियों में से जो सूअर खाते हैं अपना पेट भरना पड़ेगा। वह ठीक इस स्तर तक मजबूर हो गया था और फरीसी और आम जनता दोनों, हर एक इसराइली जो उस दिन उसे सुन रहा था, अपना मुंह पिचका रहा था क्योंकि कोई भी यहूदी इससे ज्यादा नीच काम नहीं कर सकता, अर्थात नीचे नहीं गिर सकता था। मूसा के व्यवस्था के अनुसार सूअर यहूदियों के लिए एक अशुद्ध प्राणी है, मगर इस उड़ाव पुत्र को सूअरों के साथ रहना और खाना था, यह कितनी घृणा की बात थी। वास्तव में उड़ाव पुत्र के साथ यही हुआ, यह एक अच्छा दृश्य नहीं है। प्रिय मित्र, तुरंत हम किसी को कहते हुए सुनते हैं कि यह एक पापी है और वह उद्धार पाने जा रहा है। नहीं, मुझे यह बताते हुए खेद है कि यह ऐसी तस्वीर नहीं है जो हमें दी गई है। यह पापी की तस्वीर नहीं है जिसे बचाया जाता है। मैं आपसे बड़ी सावधानी के साथ कहना चाहूंगा कि जब यह उड़ाव पुत्र अपने पिता के साथ घर में था और उसके साथ अच्छी संगति में था, वह उसका बेटा था, इसमें कोई सवाल नहीं है। और जब वह उड़ाव पुत्र दूर देश में था और अपना पैसा बर्बाद कर रहा था, फिर भी वह उसका ही पुत्र था, इसमें भी कोई शक नहीं है। जब यह उड़ाव पुत्र घोर आर्थिक तंगी में था और वह सूअरों के बीच में था, यदि आप कुछ दूर से उसे देखते तो वह आपको सूअरों से अलग नहीं दिख पड़ता, परंतु वह सूअर नहीं बल्कि उसका ही पुत्र था। इस कहानी में जो हमारे प्रभु यीशु ने बताया है, कभी कोई शक नहीं था कि यह उसका पुत्र था कि नहीं। कोई कहता है तब यह सुसमाचार नहीं है। जी हाँ मेरे मित्र, यह सुसमाचार भी है। मैं इसे ऐसा इसलिए मानता हूँ कि कुछ साल पहले दक्षिण ओक्लाहोमा शहर में एक प्रचारक इस दृष्टांत से सुसमाचार सुनाता था। कुछ लोग कहते थे कि यह बिल्ली संडे का अनुकरण करता है, मगर मैंने बिल्ली संडे के बारे में कभी नहीं सुना है, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह किसका अनुकरण करता था। वह एक थोड़ा छोटा कद का आदमी था और पेड़ के नीचे बने झोपड़ी में सुसमाचार सुनाता था। उसके प्रचार में हम लड़कों को जो मजा लगता था वह यह है कि वह मंच के बराबर कूद सकता था। वह कुछ क्षण हमारे सामने खड़ा था और कुछ क्षण तुरंत छोटा कद का आदमी मंच के ऊपर कूद के चढ़ जाता था और लोग बैठकर उसको देखते थे और दूसरे दिन लोग अभ्यास करते थे कि हम उसके समान कूद सकते हैं या नहीं। मैं आपको बताता हूं कि एक रात उसने उड़ाव पुत्र पर प्रचार किया और उसी रात प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में कई लोगों ने ग्रहण किया। इसलिए आप मुझे मत बताइए कि इसमें सुसमाचार है या नहीं। इसमें सुसमाचार है, लेकिन फिर भी मेरे मित्रों आइए हम समझें कि यह दृष्टांत प्राथमिक रूप से क्या कहता है, कैसे एक पापी बचता है, इसके बारे में यह दृष्टांत नहीं है। यह दृष्टांत उस पिता का हृदय प्रकट करता है जो न केवल पापी को बचाता है बल्कि वह उस पुत्र को भी वापस ग्रहण करता है जो पाप करता है। हम लुका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेत में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। मेरे मित्रों हो सकता है कि कुछ क्षण पहले आप सोचते थे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं जब मैंने कहा उसके अच्छे समय के मित्र उसे मदद नहीं करना चाहते थे। हमारे प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा उसे कोई कुछ नहीं देता था। आज कुछ मसीही ऐसा क्यों सोचते हैं कि इस संसार के लोग उसके अच्छे दोस्त हैं, जबकि वे उनको पाप की ओर ले जाते हैं और परमेश्वर से दूर कर देते हैं। कभी कभी विश्वासियों को ऐसे लगता है। इस उड़ाव पुत्र को भी ऐसा लगा होगा। उसको उसके घर उसके पिता से दूर और दूर ले जा रहा था और वह सोचता था कि ये सब उसके मित्र थे। हमारे पास कोई पत्र नहीं है जो उसने अपने घर दोस्तों को लिखा था। अगर हमारे पास एक पत्र होता तो मैं सोचता हूं कि वह ऐसा लिखा होता, हे मेरे दोस्त तुमको यहां आना चाहिए। तुम जानते हो मैं जहां रहता हूं वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तुमको बताता हूं कि मेरा बहुत अच्छा समय व्यतीत हो रहा है। तुम्हें भी यहां आना चाहिए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन आया जब उसने पाया ये लोग उसके दोस्त नहीं थे। उसे कोई कुछ नहीं देता था। यह इस तस्वीर का बुरा भाग है और मैं सोचता हूं कि हम जल्दी ही कुछ रंगों को देखने जा रहे हैं जो हमारे प्रभु यीशु इस तस्वीर में भरने जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रभु हमेशा हमें पहले काला या खराब पृष्ठभूमि दिखाता है और तब वह उस तस्वीर में सुंदर रंग को भरता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि परमेश्वर इस तरह से रंग भरता है? और इसलिए उड़ाव पुत्र के पाप के इस खराब पृष्ठभूमि, सुअरों के बीच, पिता की संगति से दूर, जल्दीबाजी में अपने घर छोड़ना, प्रभु यीशु इसमें सुंदर रंग भरना आरंभ करते हैं। हम लूका 15 अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। वह अपने आपे में आया। पाप हमारे लिए भयानक काम करता है। यह हमें संसार को गलत दिखाता है। यह हमें दिखाता है कि हम गलत जगह में हैं। यह हमें इस संसार के आनंद को गलत दृष्टि से दिखाता है और जब हम पाप में रहते हैं हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। यह उड़ाव पुत्र जब अपने घर में था उसने बाहर के देश को देखा। यह उसे बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत हरियाली और मजा था, मगर वह अपने आपे में आया और सबसे पहले जो उसने किया वह था सोचना। वह अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने लगा। उसने कहा, आप जानते हैं मैं अपने पिता का एक पुत्र हूं और यहां मैं एक दूर देश में हूं। मैं यहां सूरों के साथ सूरों की झोपड़ी में हूं और मेरे पिता के घर में नौकर मुझसे कहीं बेहतर स्थिति में है और मैं अपने पिता का पुत्र हूं। जब वह इस तरह से सोचने लगा तो उसे समझ में आने लगा। अब यह उड़ाव पुत्र एक बुद्धिमान के समान काम करने लगा। लूका 15 उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य भी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। मेरे मित्रों, अब हम सच में अच्छी तस्वीर को पाते हैं। यह सबसे अच्छी तस्वीर है और यह उस सुंदर घर की तस्वीर है जो हम आपको बता रहे थे। ओह, यह एक सुंदर घर है, यह पिता का घर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 2 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यह वही घर है जिसे पृष्ठभूमि में घर है के रूप में हमने देखा था, और मैं पिता को खिड़की से बाहर देखते हुए देखता हूँ। जिस दिन से उसके पुत्र ने घर छोड़ा था, उसी दिन से उसका पिता खिड़की से बाहर देखता आ रहा है। और क्या आप जानते हैं कि वह क्यों खिड़की से बाहर देखता आ रहा है? वह जानता था कि एक दिन उसका लड़का सड़क में लड़खड़ाते कदमों से घर वापस आएगा। कोई पूछता है, क्या आप विश्वास करते हैं कि जब आप एक बार उद्धार पाए तो आप हमेशा के लिए उद्धार पाए? जी हाँ। कोई पूछता है, क्या आप विश्वास करते हैं कि एक मसीही पाप में गिर सकता है? जी हाँ। क्या एक मसीही पाप में रह सकता है? जी नहीं, क्योंकि पिता के घर में पिता देख रहा है और वह कहता है, मेरे सब पुत्र घर आ रहे हैं, मेरे पुत्र सुअर के बाड़े पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सुअर का स्वभाव नहीं है, उनके अंदर पुत्र का स्वभाव है, उनमें मेरा स्वभाव है, और वे पिता के घर के सिवाय कहीं भी खुश नहीं होंगे। मेरे मित्रों, संसार में एकमात्र जगह जहां वे खुश होंगे वह है पिता का घर, और मेरे पुत्रों में से हर एक जो दूर देश में जाता है और सुअर के बाड़े में पड़ जाता है, वह कितना ही गंदा क्यों ना हो जाए या कितना ही नीचे गिर जाए, यदि वह मेरा पुत्र है, एक दिन वह कहेगा, मैं उठूंगा और मैं पिता के घर जाऊंगा। और कारण वह कहेगा मैं पिता के घर जाऊंगा, वह मनुष्य है जो उस बड़े घर में रहता है, जो उसका पिता है। अभी तक कम से कम 6000 साल के लिखित मानव इतिहास के बाद ऐसा कोई मानवीय सुअर नहीं हुआ है जिसने यह कहा, मैं उठूंगा और पिता के घर जाऊंगा। नहीं, कभी नहीं। सुअरों की गंदी जगह पसंद है, वे पिता के घर नहीं जाना चाहते हैं। सिर्फ वही पिता के घर जाना चाहता है जो उसका पुत्र है, और एक दिन पुत्र कहेगा, मैं उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा। प्रिय मित्र, अब पुत्र अपने घर जाना शुरू करता है। हो सकता है कुछ क्षण पहले आपने सोचा कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूं जब मैंने कहा कि इसका पिता खिड़की से बाहर प्रतिदिन अपने बेटे को देखता था, अर्थात इंतजार करता था, मगर वह ऐसा ही कर रहा था। और अब वह उसे आते हुए देखता है, वह तरस से भर गया और वह दौड़ता है और अपने नौकर से कहता है, पेड़ के पास दौड़ करके जाओ और आधा दर्जन छड़ी काट के ले आओ, मैं उसके शरीर को मार मार के लहूलुहान करने जा रहा हूं। क्या आपकी बाइबल ऐसा कहती है? जी नहीं, ना तो मेरा ही बाइबल ऐसा कहता है। बाइबल में इसी तरह होना चाहिए था। मूसा के व्यवस्था के अनुसार अपने आज्ञा ना मानने वाला पुत्र को लोगों के सामने लाना और उसे पत्थरवाह करके मरवाने का अधिकार था। इस पिता को यह कहने का पूरा अधिकार था, इस लड़के ने मेरा नाम और मेरा धन और मेरी जीविका ले ली और उसको उड़ा दिया, उसने मेरा नाम का अपमान किया है, मैं उसके शरीर को कोड़े लगा लगा कर लहूलुहान कर दूंगा, उसे यह करने का अधिकार था। मगर इस पिता ने कुछ अनोखा काम किया, और जब हमारे प्रभु यीशु दृष्टांत के इस भाग से होकर के आते हैं, और जब उसने तस्वीर पर अपना अच्छा रंग भरा, तो जो लोग वहां थे वे आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसका घोर समस्या में पड़ना और सूरों के बीच में रहना देखना बुरा है, मगर पिता का पुत्र को सजा दिए बिना वापस घर ले जाना उसमें भी बुरा है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। इस बात को हम पसंद नहीं करते, उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या आप ध्यान देंगे कि पिता ने क्या किया? मुझे आप ठीक ठीक पढ़ने दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 20 पद में कृपया आप ध्यान से सुने, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूरी ही पर था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मेरे मित्रों, वह मैले और चिथड़े कपड़ों में था और लगभग उसे सूंघ सकते थे। ओह, सुअर का सा गंध आ रहा था। लड़का खड़ा था और उसका पिता उसके पास जाता है, उसको गले लगाता है और उसे चूमता है। लूका 15 उसके 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आप देखिए, उसने कुछ बोलने के लिए याद रखा था जो उसने दूर देश में योजना बनाया था, वही अब वह बोल रहा है। मैं सोचता हूं कि वह रास्ते भर इसे दोहराता रहा होगा और मैं यह भी सोचता हूं कि हर कदम में वह कहता था, जब मैं घर पहुंचता हूं मैं उसे यह कहने जा रहा हूं, पिताजी, मैंने स्वर के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है और मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, मुझे अपने नौकर के समान रख लीजिए। उसने इसे अपने पिता से कहना शुरू किया, लेकिन वह ज्यादा कह नहीं सका। वह कहने लगा, मैं आपका पुत्र कहने के योग्य भी नहीं रहा। वह इतना ही कह पाया था कि उसके पिता ने उसे रोका। और हम आगे पढ़ते हैं लूका 15 उसके 22 से 24 पद में लिखा हुआ है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। मेरे मित्र, यदि आप आनंद चाहते हैं तो वह आपको दूर देश में नहीं मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं अर्थात पुत्र हैं, तो आप पाप करके बच नहीं सकते हैं। मेरे मित्र, आप सुअर के बाड़े तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप कभी उसमें आनंद नहीं पा सकते हैं। अगर आप पिता के पुत्र हैं तो एक दिन आएगा जब आप कहेंगे, मैं उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा, और आप जाएंगे, और जब आप जाते हैं तो आप उसके सामने पश्चाताप करेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 1:9 पद में लिखा है, और यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसी तरह से एक पाप करने वाला पुत्र पिता के घर की संगति में वापस आता है। वास्तव में पश्चाताप ही वापस जाने का एक रास्ता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पिता क्या कहता है? वह अपने पुत्र के लिए जो करने वाला है, वह कहता है, वस्त्र लाओ। अब यह साफ वस्त्र था जो उसे नहलाने के बाद पहनाया गया, और यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें साफ करता है। जिसने अपने कमर में तौलिया बांधा वही है जो अपने बच्चों को साफ करता है। जो उसके पास वापस आता है उसे साफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह दूर देश से आया है। मेरे मित्र, वह वस्त्र प्रभु यीशु की धार्मिकता का वस्त्र है जो उसे साफ करने के बाद पहनाया जाता है। अंगूठी पुत्र के परिपक्व होने और अधिकारी होने का चिन्ह है। उसे असली स्थिति में लाया गया, उससे कुछ भी नहीं लिया गया, उसे अपने पिता के घर में अपने जगह पर लाया गया। प्रभु यीशु अभी पिता के दाहिने ओर बैठे हैं, अभी भी उनकी सेवा के लिए कमर में तौलिया लपेटा हुआ है। जो दूर देश में अपने हाथ या पैर गंदा करते हैं और जब हम उसके सामने पश्चाताप करते हुए आते हैं, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और वह हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। हमें उसी तरह आना है जैसे उड़ाव पुत्र आया, पिता मैंने पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं, मेरे मित्र, मुझे एक मजदूर की नाई रख लें, और पिता कहेगा, मैं तुझे कभी मजदूर नहीं बनाऊंगा अर्थात नौकर नहीं बनाऊंगा, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझे वापस अपने संगति में ले लूंगा और तुझे काम करने योग्य बनाऊंगा। मेरे मित्र, पुत्र हमेशा एक पुत्र होता है इस दृष्टांत में, और दूसरा एक उड़ाव पुत्र है। हम लूका 15 उसके 25 से 28 पद में पढ़ते हैं, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। मित्रों, इस लड़के की सुनिए कि वह कितना शिकायत करने वाला और बातों को पकड़ने वाला है। यही असली उड़ाव पुत्र है। जब उसने सुना कि उसका भाई वापस घर लौट आया है और उसके लिए जश्न मनाया जा रहा है, तो वह गुस्सा हो गया। वह अंदर आना और जश्न में शामिल होना नहीं चाहता था। उसका पिता बाहर आया और उसे भोज में शामिल होने के लिए मनाने लगा। हम लूका 15 उसके 29 से 32 पद में पढ़ते हैं। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। मेरे मित्र, बहुत मसीह हैं जो दूर देश में नहीं रहते हैं। वे परमेश्वर के लिए जीने की कोशिश करते हैं, मगर वे असफल हैं। क्यों? वे हर प्रकार के आत्मिक आशीष में आशीषित हैं, परंतु वे इसे स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर कहता है, यह सब तुम्हारे लिए है, हर एक जो मेरा है तेरा है, इसे ले लो। हमारे स्वर्गीय पिता आत्मिक आशीषों में बहुत धनी हैं और वे सब हमारे लिए हैं, परंतु वह इसे लेने के लिए हम पर दबाव नहीं डालता है। हमें जाना है और इन्हें हमारे लिए अपना लेना है। कहानी बड़े पुत्र का अपने पिता के साथ संगति से दूर के साथ अंत होता है। पिता ने फिर भी संगति का दरवाजा खुला छोड़ा। मेरे मित्र, वर्षों पूर्व डॉक्टर चैडविन ने यह कथन कहा कि उड़ाव पुत्र के इस दृष्टांत में तीसरा पुत्र है। छोटका पुत्र ने पिता के हृदय को तोड़ा, बड़ा पुत्र संगति से बाहर था और तीसरा वह है जिसने यह दृष्टांत कहा। वह हमारा प्रभु यीशु है जो परमेश्वर का पुत्र है। वह पाप रहित एक आदर्श पुत्र है। वह दूर देश भागने के लिए नहीं, परंतु उसके पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। उसने अपना जीवन लड़ाई झगड़े में नहीं, परंतु बलिदान रूपी मृत्यु में खर्च किया। वह एक उड़ाव पुत्र नहीं, परंतु एक शांति का राजकुमार था जिसने जगत के पापों के लिए अपना लहू बहाया। वह एक गुमराह पुत्र नहीं, परंतु एक स्वेच्छा से बलिदान देने वाला पुत्र था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में वह कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो सिर्फ उसके नाम पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार होता है। प्रिय मित्र, यदि आप वह पुत्र हैं जो दूर देश को चला गया, तो आप पिता से अपने पापों से पश्चाताप करके उसके पास वापस आ सकते हैं। शायद आप बड़े पुत्र के समान जो पिता की संगति से बाहर है, उसको अपने भाई का कोई ध्यान नहीं था या उससे कोई प्रेम नहीं था। वह सोचता था वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। उसने अपने भाई के समान कभी भी कोई अपराध नहीं किया, फिर भी वह अपने दोस्तों के साथ भोज का आनंद नहीं ले पाया था। पिता आपसे कहता है, मेरा जितना भी है वह सब तेरा है। इस तरह का पिता होना कितनी अद्भुत बात है। मेरे मित्र, यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो आप पिता के पुत्र नहीं हैं। आप केवल प्रभु यीशु पर विश्वास और उस पर अपना भरोसा रखने के द्वारा ही उसके पुत्र बन सकते हैं जो आपके पापों के लिए मरा। यदि आप प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे और उसके पास आएंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर आपका पिता बन जाता है और वह आपको कभी भी बाहर नहीं निकालेगा। यदि आप उसे छोड़ेंगे और उसके पास वापस लौटेंगे, तो वह आपको गले लगाने के लिए इंतजार करेगा। वह कितना अद्भुत है। मेरे प्रिय मित्र, हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस उड़ाव पुत्र की कहानी के द्वारा, जो एक सच्ची घटना या दृष्टांत के रूप में हमें दी गई है, इसके द्वारा से आपने आशीष को प्राप्त किया है। यदि आज आप भी उड़ाव पुत्र की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु यीशु के पास लौट आए। वह आपको क्षमा करने, आपको शुद्ध करने के लिए तैयार हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
राजाओं का